ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता मोहन सिंघल जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी यूपी की धरनी देहरादून से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1962 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और तभी से ही बाबा की सेवाओं में लग गए। आसाम, बिहार, गुजरात में विशेष करके सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। 1967 में जब आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की तो उसके बाद आपने ONGC ज्वाइन किया और जब ज्ञानसरोवर एकेडमी का उद्घाटन हुआ 1995 में, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी की ज़रूरत थी तो आपने 1996 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उस समय आप सुपरिंटेंडेंट थे वहाँ पे, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और ज्ञानसरोवर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर का पदभार संभाला। तब से हेडक्वार्टर में आप रहते हैं। 1985 में आप यूथ विंग के सेक्रेटरी थे और उस समय करीब 12 पदयात्राओं को आपने आयोजित किया और उसके बाद 1988 से आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, जिसके अंतर्गत हर वर्ष काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस पूरे हेडक्वार्टर में भी और भारत भर में भी आयोजित होती रहती हैं। आपने कई सारी एग्जीबिशंस भी निर्माण की हैं, कई सारे पुस्तकें भी लिखी हैं और नेशनल लेवल पर भी आपने अवार्ड प्राप्त किया है पर्यावरण श्री का, और साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने अवार्ड प्राप्त किया है। आप हमारे राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर, आप गवर्निंग बॉडी हैं। बहुत सारी आपकी जिम्मेवारियां हैं गुप्त रीति से। आज हमारे बीच में ये सब जिम्मेवारियां संभालते हुए भी कैसे हम अपनी स्थिति को एकरस बनाएं, इस पर हमें मार्गदर्शन देंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बहन जी ने परिचय तो बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुख्य परिचय जो आपस में हम लोगों का होना चाहिए वो रह गया। कौन सा? कि हमें साकार मात पिता, बाप दादा, बाबा मम्मा के पालना का सौभाग्य मिला, और इतना ही नहीं बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उस समय हम यहाँ पर मधुबन में ही थे और हमें अपनी आँखों से बाबा की कर्मातीत स्थिति को देखने का परम सौभाग्य मिला, और साथ ही साथ बहुत सारी और प्रेरणाएं भी मिली। आज संभव हुआ तो कुछ उसमें से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो विषय ही ऐसा है एक रस स्थिति का, और आज की मुरली तो सबने सुनी होगी ना, तो मुरली में वरदान ही आज के विषय को बहुत स्पष्ट करता था। क्या वरदान था? एक एक रस स्थिति से ही संबंधित था कि एक एक के पाठ के द्वारा ही जीवन में सदा सफलता भी प्राप्त करते हुए राजयोगी बनते चले। एक का पाठ, वैसे तो एक का पाठ हम सबको बचपन से बहुत बहुत पक्का है। ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? एक का पाठ बहुत बहुत पक्का है, क्योंकि अक्सर करके हम सब लोग एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते रहते हैं। कोई भी बात होती है, भाई उसने ऐसा किया, ऐसा करते हैं ना, तो एक का पाठ वो तो पक्का है। उसके साथ ही साथ तीन का पाठ भी सब दुनिया पढ़ा देती है कि एक भले दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन तीन अपनी तरफ भी। तो उस रीति से तो एक का पाठ ये पक्का है, लेकिन बाबा का भाव इसमें क्या है? एक रस स्थिति का, कि हम सब की स्थिति जो है ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, उन सब के अंदर हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि हमारी स्थिति को डगमग न कर सके। एक रस स्थिति में हम रह सके और जीवन में सदा सफलता प्राप्त करते चले। तो इसलिए एक रस स्थिति की जब हम लोग बात करते हैं, तो नेचुरली हमारे मन में कई सारी बातें आती हैं। और उस एक रस स्थिति के लिए एक का ही पाठ पटका करना है। बाबा ने एक के पाठ तो कई बार पक्के कराए हैं, याद होंगे ना? एक का क्या क्या पाठ पक्का कराया है बाबा ने? हाँ बोलिए। एक में देखो, बाबा ने बहुत बताया है, इकोनॉमी, एक नामी, एक रस स्थिति के लिए, एक व्रता, एकांत और एकाग्रता। बहुत अच्छा। और एकांत, एकांतवासी, एकाग्रता, सब। तो देखो, एक के अंदर ही आज के जो विषय है उसका सारा का सारा गुह्य रहस्य समाया हुआ है, उस एक के अंदर। आप सबको मालूम ही। लेकिन प्रश्न यही पैदा होता है कि सदा, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे बड़े हैं, आगे हैं, लेकिन कौन सा शब्द बाबा पक्का कराता है? सदा। सदा हम बस एक रस स्थिति में रहे। उसका भाव क्या है एक रस स्थिति का? जब जीवन में एक रस्ता की बात आती है, तो एक रस्ता की बात में क्या क्या आती है बात? हाँ बोलिए। एक जो है, एक के अंदर ही सबसे पहले तो चाहिए एकता हमारे अंदर, क्योंकि एक रस स्थिति तभी नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब मन कुछ और सोचता है। पहले दिन का पाठ ही पढ़ाया जाता है मन बुद्धि संस्कार का, मन एक बात सोचता है, बहुत कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ निर्णय और देती है, और पुराने संस्कार के वशीभूत हम कर्म कुछ और कर बैठते हैं। अंदर ही हमारे एकता नहीं है। तो सबसे पहली तो हमें अगर एक रस स्थिति चाहिए तो अंदर हमें अपनी एकता होनी चाहिए, मन बुद्धि संस्कार की एकता, मनसा वाचा कर्मणा की एकता। और ये एकता जितनी धीरे 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 आती जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी एक तो एक रस स्थिति होती जाएगी। एक तो बाबा ने ये पाठ पक्का कराया है मन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम अपने को ये देखें अंदर कि मेरे अंदर अपने मनसा के अंदर क्या भाव उठते हैं। चश्मा होता है ना, जैसे कुछ भी अगर आँख में अगर फॉल्ट होता है, तकलीफ होती है, चश्मे का नंबर गलत होता है कुछ, तो क्या होता है, क्या होता है एक की बजाय दो दो तीन तीन भी दिखते हैं। तो जब ड्यूअलिटी, जब हमारे मन के अंदर भी ना कोई एक, बाबा ने तो एक रास्ता स्पष्ट बता दिया है, लेकिन जब कभी हमारे अंदर मनसा के अंदर ही कोई मन मत पर मत दूसरे और कोई माया की मत कुछ भी अंदर जब ड्यूअलिटी आ जाती है, दो बात आ जाती है, तीन बात, तो वो इस कारण से ही आती हैं कि हमारे मन के अंदर जो है वो एक मत जो बाबा की है वो हम टिक करके नहीं रख सके, और एक न होने के कारण फिर अनेकानेक बातें मन के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए आवश्यकता ये है अपने अंदर ही अंदर जागना चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है कि अगर माया आए तो क्या करो, केवल भगा नहीं दो, दूर से ही भगा दो। दूर से ही भगाने की बात का मतलब क्या है कि माया का जब संकल्प पहला ही आता है ना तो हम उसे वेलकम कर लेते हैं। अंदर ही अंदर मन के अंदर कहीं पर थोड़ा सा जैसे गुदगुदी, मन के अंदर जो कमजोरी होती है वो ही माया है। माया और विघ्न में फर्क क्या है, क्या फर्क है, बड़ा सहज है। विघ्न दूसरों की तरफ से, अच्छा अपनी तरफ से नहीं। विघ्न जो है एक्चुअली वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है, बस ये सूक्ष्म वो है। बाहर से कोई भी विघ्न, स्थूल कोई भी आया, मान लीजिए हम क्लास के लिए तैयार होके निकले, गुरुवार का दिन है, सब बिल्कुल जाने के तैयार हैं, बाहर निकले, गाड़ी में पंचर है, कोई भी नहीं जा सकते, तकलीफ, तो वो विघ्न कहेंगे। लेकिन इस विघ्न के वशीभूत होकर अगर हमारे अंदर और कमजोर संकल्प, देखो ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये हुआ, अभी क्या करें, इस वक्त तो रिक्शा भी नहीं मिलेगी, टैक्सी नहीं मिलेगी, अनेक जो विचार चलते हैं, और फिर ये होता है चलो आज नहीं जाते, फोन से सुन लेते हैं, तो कोई तो वो माया के संकल्प है। तो पहले डिफरेंस ये अपने अंदर पर होना चाहिए, क्योंकि एक रस स्थिति में सबसे पहले बाधक जो है ये हमारा मन ही है। तो इस कारण से पहले हमें ये देखना है अपने मन को कि एक रस स्थिति में अनेक अनेक प्रश्न जो पैदा करता है ये मन, तो ये ना जो आता है बात, उस बात को हम इस रीति से समझें, क्योंकि मन जो है ना, मन एक सब जानते हैं संकल्पों का नाम है। वो सुनी होगी, एक राजा के दरबार में एक आया भिक्षुक, वो भिक्षुक कोई छोटा सा भिक्षा का पात्र लेकर के आया और उसने राजा को कहा कि राजन मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो राजा ने कहा हाँ हाँ, मंत्री को बोला इसको इतने ये मीन वो लाके दे दो, जो कि धन दौलत जो कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी। मंदिर वो गया अंदर और लाके उसने डाल दिया, वो नहीं भरा, छोटा सा ही पात्र था। दोबारा वो गया, उसने डाला। कई बार वो अंदर गया मंत्री और बहुत बार डाला, लेकिन देखने में वो पात्र छोटा था लेकिन भरता नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सभी को जो भी दरबार में बैठे हुए थे। तो सबने राजा ने कहा कि महाराज जरूर इसके अंदर कोई रहस्य है, आप बताइए क्या रहस्य है। देखने में इतना छोटा और इतना भर भर के वो ला रहा है लेकिन ये भर नहीं रहा है। तो उसने कहा, क्या कहा होगा, महाराज ये जो पात्र बना है ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, उसके अंदर मन होता है और मन तो कभी तृप्त होता ही नहीं। एक इच्छा आप मन की तृप्त करो, दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी तृप्त करो तीसरी पैदा हो जाएगी, अनेका अनेक इच्छाएं मन पैदा करता रहता है। इसीलिए देखने में ये छोटा है मन भी, बहुत संकल्प का नाम, लेकिन कभी भी मन बिना संकल्प के तो रहता ही नहीं। उसके अंदर इच्छाएं इच्छाएं और अनेका अनेक इच्छाओं का जन्म होता रहता है। इस कारण से आवश्यकता क्या है कि ये मन को ना ये पहले चेक, बाबा ने कैसे चेक किया, ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का हमें काफी मौका मिला। 62 में ज्ञान में आए और 62 से 69 तक बहुत बार दिल्ली में भी मिले, दो बार कानपुर में भी मिले, मधुबन में तो हर साल मिलना ही होता था आदि आदि। तो ब्रह्मा बाबा ने भी जब ज्ञान में आए, उसमें लिखा है शुरू में जब 1936-37 में ज्ञान में आए, तो बाबा ने भी ये अनुभव किया कि ये मन बार बार भाग जाता है। जब भी मैं योग लगाने बैठता हूँ मन कभी बच्चों की तरफ, स्त्री की तरफ, परिवार, धंधे, दोरी, रिश्तेदारों, पूरे सब तरफ भाग जाता है। तो बाबा ने क्या किया, क्या किया बाबा ने, आप सबने सुना होगा, मन को पत्र लिखा। मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है और तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं तू मंत्री है, लेकिन हो उल्टा रहा है। तूने मुझे अपने वश में कर लिया है, मुझ राजा को, और तू जिधर जिधर भागता है उधर उधर मैं भी राजा तेरे पीछे पीछे भागता हूं। तो इसीलिए अब मैं कह देता हूं तुझे कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, क्योंकि जब बाबा को ज्ञान हुआ अब मुझे ज्ञान हो रहा है मैं राजा और तू मंत्री, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही और तुम दोनों ने मुझे सब तरफ बिल्कुल चंचल बना दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि तुझे भी मन की तरह मेरे कहने पर चलना होगा, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो इस तरह बाबा ने ये कह करके वो अपना मन और बुद्धि को वश में किया। नहीं तो पहले तो बाबा की भी हम सब की भी बुद्धि, जैसे जब शुरू में ज्ञान में आते हैं तो भागती है, बाबा की भी भागती थी, उनका भी बड़ा परिवार था, सब कुछ था, लेकिन उसमें भी बहुत धीरे धीरे जब समय लगा तो बाबा ने क्या किया, कैसे बाबा ने बताया बच्चों को, बच्चे देखो अपने सम्मान की सीट पर स्थित रहो। जैसे कोई ऑफिसर होता है, जब तक अपनी पोजीशन पर है, सीट पर है, वो ऑर्डर करेगा, सब उसकी बात मानेंगे, और जब वो सीट पर सेट नहीं होगा, ट्रांसफर हो गया उसका, यहाँ से रिटायर हो गया, चला गया, तो कोई उसकी बात मानेगा, नहीं मानेगा। ऐसे ही आप बच्चे भी जब भी किसी शक्ति को ऑर्डर करो तो उसको आप पहले देखो कि मैं अपने सम्मान की सीट पर बैठा हूं। जब सम्मान की सीट पर हम नहीं होते हैं तो कोई शक्ति हमारा ऑर्डर नहीं मानती है। तो इसीलिए यदि हमें एक रस स्थिति में रहना है तो ऐसी परिस्थितियां बहुत आएंगी, विपरीत परिस्थितियां जीवन में, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, हम सब ने सुना है गीता में ये सब जो परिस्थितियां कही हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसमें हमारी स्वस्थिति मजबूत रहे और हम परिस्थिति के वश न हो, हमारी एक रस स्थिति मेंटेन रहे, तो हमें देखना पड़ेगा कि मैं जिस शक्ति का ऑर्डर कर रहा हूं, मानो कोई परिस्थिति आई जब मुझे सामना करने की शक्ति है या समाने की शक्ति की जरूरत है, मैंने ऑर्डर किया नहीं आई, इसका मतलब मैंने सम्मान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले सम्मान, जो बाबा ने इतने बड़ी सम्मान की लिस्ट दी है, उस लिस्ट को रोज दोहराओ, रोज पढ़ो और रोज एक या दो सम्मान को पक्का करो, आज मुझे ये सम्मान के अंदर सारे दिन भर रहना है। उससे क्या होगा कि सारे दिन भर में अगर कोई भी परिस्थिति अगर आई ऐसी ही, तो हम उस वक्त जिस शक्ति को ऑर्डर करेंगे, जिस गुण को ऑर्डर करेंगे, वो तुरंत हमारे ऑर्डर मानेगा और आकर के हमें तुरंत बल शक्ति प्रदान करेगा और हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए ये देखना है हमें अपने को कि मैं हर परिस्थिति में कितना शक्तिवान रहता हूँ। बाबा को भी हमने देखा कई बार ना, मुरली चलाते चलाते बाबा को काफी खांसी आ जाती थी, कफ आ जाता था, और कभी कभी तो बाबा की आंखें एकदम गीली जैसी भी हो जाती थी, तो हम लोग सोचते थे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है शायद बस। लेकिन बाबा के यहाँ पर हिस्ट्री हॉल में आपने देखा है, अभी तो दो है, पहले तीन संदली रहती थी, एक पर बाबा बैठते थे, एक पर मम्मा बैठती थी, बीच में संदली खाली रहती थी, और बाबा जो है बस मुरली चलाते थे, मानो चलाते चलाते बहुत खांसी। तो बाबा के संदली के पास कृष्ण का चित्र और लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र दोनों रहते थे, और कई बार बहुत ऐसी परिस्थिति हो जाती थी, लगता था जैसे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बस बाबा एकदम देख के, देखो बच्चे अभी तो ना पुराना शरीर है, पुराने तत्व हैं, आत्मा भी इतनी पुरानी हो गई है 84 जन्म लेते हुए, और इसीलिए ये पुराने हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कल नारायण बनेगा, कोई तकलीफ नहीं हो गई, सारे तत्व सतो प्रधान होंगे, पूरी दुनिया कितनी सतो प्रधान होगी, कोई ये तकलीफ नहीं। देखो बच्चे बाबा की तरह ना बच्चों को भी एकदम सदा खुशी में रहना चाहिए, कोई परिस्थिति आए तो अपनी स्वस्थिति को मजबूत करो। तो बाबा अपनी स्वस्थिति को मजबूत, बस मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, ये पुराने तत्वों से हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और बस ये संकल्प करते थे, और थोड़ी देर में जैसे वो खांसी किधर विदा हो गई पता भी नहीं चलती थी, और बाबा फिर मुरली चलाने लगते थे उसी। तो परिस्थितियां तो बाबा के सामने भी बहुत आई, लेकिन परिस्थिति पर अपनी स्वस्थिति से विजय प्राप्त कर लेना, ये बाबा हम बच्चों को समय प्रति समय सिखाते रहते थे। तो एक तो ये जरूर देखना है हमें अपने को कि हमें ऐसी स्थिति में रहना है कि हम हर परिस्थिति को पार कर सके, कोई भी परिस्थिति हमें हरा ना सके, हम विजय प्राप्त कर लें। और यूजुअली क्या होती है, एक रस स्थिति कब रहती है, जब वर्किंग होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाबा ने बताया सबसे बड़ा, बाबा को सबसे प्रिय चीज कौन सी है, सबसे प्रिय चीज कौन सी है, हाँ बहुत अच्छा, सच्चाई सफाई, ये बाबा, इसीलिए भगवान का नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सच्चाई है ना, ये बाबा को सबसे प्रिय है। तो ये हमें देखना है, बाबा ने कहा कि हमें अपने अंदर झांकते रहना है, अगर हम एक रस अवस्था चाहते हैं, एक रस स्थिति चाहते हैं, तो हमें एक अपने अंदर ये देखना पड़ेगा कि हम बाबा के साथ सदा सच्चे और साफ रहें। और ये कब होगा, जब हमारी बुद्धि उतनी क्लीन और क्लियर होगी, क्योंकि अभी परिस्थितियां ऐसी आनी हैं, एक तो हम एक रस स्थिति में कैसे रहें, उसके लिए बाबा पहले से ही सावधानी कर रहे हैं कौन सी स्थिति आनी है। एक पहली बात जो बाबा ने बताया है वो बच्चों में कौन सी शक्ति अभी होनी चाहिए, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, क्योंकि अब माया क्रूड वे में नहीं आएगी, मोटे रीति से नहीं आएगी, अब माया जो बच्चों के सामने आ रही है बहुत मीठे रूप में, मधुर रूप में, ऐसे रूप में कि वो माया का रूप लगता ही नहीं है, वो लगता है ये तो कोई दैवी गुण का रूप है, किसी के प्रति बहुत ही अत्यंत स्नेह की भावना, अत्यंत प्यार की भावना। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं एक रस स्थिति रहे, तो हमें एक बात ये देखनी है कि हमारी सब आत्माओं की तरफ ना समान दृष्टि रहे, लाइकिंग या डिसलाइकिंग किसी की तरफ ना हो। अक्सर करके होता क्या है, हमारी लाइकिंग होती है, किसी के प्रति बहुत स्नेह प्यार होता है, जिसके जो हमारा सहयोगी होता है जैसे, तो उससे क्या होता है, उसके प्रति लाइकिंग हुई तो जरूर किन्हीं के प्रति डिसलाइकिंग होगी, ये अवश्य है। अगर लाइकिंग है तो डिसलाइकिंग होगी, डिसलाइकिंग है तो लाइकिंग होगी, नहीं तो सबके प्रति बिल्कुल समान दृष्टि होगी, होनी चाहिए। तो ये हाँ कबीर ने भी कहा है ना, सुना है ना वो, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, न किसी से अति मित्रता हो, स्नेह हो, प्यार हो, न किसी से बैर की भावना हो। बस ये अगर हुआ, समझो जरूर अगर किसी से बहुत स्नेह तो दूसरे से अति बैर जरूर होगा, और होता है अपने ही परिवार में। हमारा परिवार अब तो यही है, बाहर के परिवार से धीरे 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 संबंध कम होते जाते हैं। तो क्या होता है कि जब यही परिवार होता है तो उनके प्रति जरा थोड़ा दूर होते जाते हैं, और अपने परिवार में ही निकटता कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आवश्यकता एक बात की है कि ये देखना है जहां कहीं भी लगे किसी के प्रति, हाँ वो कोई भी बहन या भाई है, वही हमारे प्रति उनका दृष्टिकोण उतना अच्छा नहीं है, हम समझते हैं कि मुझे कम स्नेह मिलता है, उसे ज्यादा स्नेह मिलता है, या हम ऐसा समझते हैं, निगेटिविटी की कहीं भावना आती है, तो इसका मतलब यही है कि जरूर हमारा किसी और के प्रति ज्यादा पॉजिटिव भाव है, इनके प्रति निगेटिव है। तभी तो सामने से आते हैं, हम नजर बचा के चले जाते हैं, उनके साथ बात करने की दिल नहीं होती, कितनी बार ऐसा होता है। तो ये एक रस स्थिति को बनाने में बहुत बहुत बड़ा विघ्न है। क्यों? क्योंकि हमारा संसार तो अब यही संसार है जो ये वर्तमान में संसार हम देखते हैं। तो इसीलिए एक हमें ये देखते रहना है कि हमें अपने अंदर न किसी के प्रति बहुत लाइकिंग यानी कि कोई स्नेह भाव, न ही किसी के प्रति डिसलाइकिंग का भाव। और क्या चाहिए? एक हमारी दृष्टि जो है ना, बाबा जो बोलता है, जो अंत समय भी बहुत बहुत काम आएगी, और उससे पहले अभी जो बात चल रही थी कि माया का ऐसा सुहावना, ऐसा मनमोहक रूप आएंगे, तो इसीलिए हमारी निर्णय और परखने की शक्ति बहुत बहुत तीव्र होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और वो कब होगी? जिसके लिए बोला पहले भी, एकाग्रता से। अगर हम योग लगाते हैं लेकिन हमारा ध्यान बीच बीच में कहीं चला जाता है, बाबा की तरफ नहीं, कोई भी कार्य की तरफ चला गया, कोई भी ऑफिस की तरफ, परिवार की तरफ, इसका मतलब हमारे एकाग्रता में बहुत कमी है। और उस कमी का एक मुख्य कारण ये है कि हम ज्यादा समय तक बैठ करके योग नहीं लगाते। बाबा ने सहज कर दिया, चलते फिरते योग लगाओ, तो चलते फिरते बहुत लाइट टाइप का योग होता है, तो उससे क्या है, हमारी एकाग्रता खंडित होती है। तो इसीलिए भले योग न लगे, आप यहाँ पर आए हैं तो एक घंटा भी लगाइए, दो घंटा भी लगाइए, चाहे बैठिए, उसमें बुद्धि भले भागे, लेकिन आप देखेंगे कि चार दिन में आप पहले दिन अगर वो कोई बुद्धि आपने एक घंटा बैठे उसमें आधा घंटा भागी है, दूसरे दिन 5-10 मिनट कम भागेगी, तीसरे दिन और कम भागेगी। तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी बहुत आवश्यक है। एकाग्रता अगर नहीं होगी तो क्या होगा? निर्णय शक्ति हमारी गलत हो जाएगी। कोई परिस्थिति आए लेकिन हमने निर्णय ही गलत ले लिया, तो एक तो निर्णय शक्ति चाहिए और दूसरी चाहिए फिर कौन सी शक्ति? सामना करने की। कोई परिस्थिति आई, हमने निर्णय ले लिया, चलो एकाग्रता की शक्ति बढ़ा ली, हमने निर्णय ठीक ले लिया, लेकिन सामना कैसे करेंगे? उसका सही रीति से सामने के लिए बाबा ने बताया है, हमेशा बस बाबा का आह्वान और बाबा का हाथ और साथ। बाबा मेरे बाबा, बाबा ने शब्द दिए हैं, आओ मेरे बाबा, आओ आओ बाबा, मुझे मदद करो, ये मैं इस परिस्थिति में हूँ, आपको मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालना है। बाबा मेरे साथी, मेरे बाबा आओ। हमने तो इसे दसियों बार, पचासों बार अप्लाई किया है, ट्राई किया है, और बाबा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना देगा, किसी परिस्थिति को बदल देगा, कोई न कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि वो परिस्थिति एकदम बदल जाएगी और आप विजयी हो जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों बार हमने इसे चेक किया है, आप भी खुद चेक करिए। बाबा आओ, होता क्या है, हमें बाबा का आवाहन हम देर में कर पाते हैं, लेकिन बाबा का आह्वान नहीं हो पाता। इस कारण से पहले लौकिक कोई याद आएगा, व्यक्ति याद आएगा, परिस्थिति को ये बदल सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ये सब चीजें जब आती है ना, तो फिर बाबा भी साक्षी हो जाता है। साक्षी दृष्टा हमें होना है परिस्थिति के लिए, लेकिन बाबा साक्षी हो जाता है कि बच्चे को ये स्थूल संबंधी ये याद आ रहे हैं, और जब बहुत थक जाते हैं हम, कहीं से मदद नहीं मिलती, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा तुरंत ही जैसे दौड़ा दौड़ा आ जाता है। द्रौपदी की भी बात सुना हुआ है ना, द्रौपदी ने भी कहा ना कि ये प्रभु, जब मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी तो आप नहीं आए, तो भगवान ने क्या कहा, हे द्रौपदी तुम याद करो, तुमने किसको याद किया, पहले तुमने अपने पांचों पति की तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य देखा, भीष्म पितामह देखा, धृतराष्ट्र, सब तरफ तुमने नजर दौड़ा ली और सब नजर नीचे किए हुए बैठे रहे, कोई तुम्हारी मदद को नहीं आया, और अंत में जब तुमने पुकारा तो मैं नंगे पैर ही जैसे दौड़ता हुआ आ गया। हम सबके साथ यही होता है कि हमें पहले लौकिक वो याद आते हैं, परिस्थितियां हम कैसे बदल सकते हैं, धन के द्वारा बदल सकते हैं, व्यक्ति के द्वारा, ऐसे अलग अलग, और जब बिल्कुल वो हार जाते हैं, बाबा बाबा आओ, बाबा मदद करो, मेरे साथी, मेरे बाबा, बाबा ने ये शब्द दिए हैं, इसको आप जैसे ही इन्वोक करेंगे तो आप खुद देखोगे, अरे परिस्थिति कैसे बदल गई। कोई बाबा ऊपर से कुछ फेंकेगा नहीं, ऊपर से कोई नहीं, लेकिन यहीं पर ही के व्यक्तियों को, यहीं वस्तुओं को, यहीं साधनों को, यहीं की परिस्थितियां बदल करके बाबा आपको उस विपरीत परिस्थिति से निकाल लेगा। तो निकलने का फायदा क्या हुआ कि एक रस स्थिति हमारी मेंटेन रही, क्योंकि एक रस स्थिति बिगड़ती ही तब है जब विपरीत परिस्थिति आती है, और विपरीत परिस्थिति में हम डगमग हो जाते हैं, डगमग होने लगते। इसीलिए विपरीत और अंत समय में काम में भी क्या आएगा, ये एक तो यही बताया आपको कि निर्णय शक्ति काम आएगी और सामना करने की शक्ति, लेकिन अभी बाबा ये कह रहा है कि किस अंत में आपको काम में आने के लिए कौन सा दो गुण की विशेष विशेष आवश्यकता पड़ेगी। कौन से दो गुण? हाँ, जो हमें, क्योंकि यहां पर हम जो भी शक्तियां हैं सीख रहे हैं, वो सब संगम युग में परिस्थितियों का सामना करने, चाहे सहन शक्ति हो, समाने की हो, कोई भी ऐसी शक्तियां ले लो, संगम में ही हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, उसको सामना करें। लेकिन अल्टीमेटली तो हमें सतयुग में जाना है, वो वाले गुण चाहिए, वो शक्तियां चाहिए अल्टीमेटली। तो इसीलिए एक तो गुण चाहिए हम बच्चों को अभी वर्तमान समय, वो चाहिए रहम दिल का। बाबा ने खास बताया और हमने खुद देखा इतने समय तक बाबा मामा के साथ भी, दादियों के साथ रहने का मौका मिला, देखा इतना रहम दिल की भी भावना, कोई बात भी हो जाए बस अगले क्षण तक जैसे दादियां भूल जाते थे, ध्यान ही नहीं रहता था, और फिर रहम दिल होके क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि ये चीज आवश्यक इसलिए है रहम दिल का गुण, कि रहम दिल अगर होंगे हम तो दया की भावना, दातापन की भावना होगी। गरीब होता है, कोई भिखारी होता है पास में से गुजरता है, बहुत ऐसी बात बोलता है, देखो ये भूखा है, बच्चा है, तो रहम आ जाता है, तो हम दाता बन करके उसे कुछ दे देते, ऐसा होता है ना। तो दाता तब बनेंगे जब हम रहम दिल होंगे। तो ये रहम दिल का गुण और दाता बनना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? दातापन का गुण, हाँ, देवता बनना है, देवता दाता होते हैं। देखो हम सबको ये शरीर तो छोड़ना ही है, इस शरीर के साथ तो सतयुग में जाना नहीं है, तो ये पांच तत्वों का शरीर है, तो इन पांच तत्वों के शरीर के साथ हमें इनका सहयोग अंत तक चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, कैसी? जैसी भीष्म पितामह का गायन है, इच्छा मृत्यु। ब्रह्मा बाबा को भी मैंने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा बाबा की भी इच्छा मृत्यु थी। पहले ब्रह्मा बाबा से मिला करते थे हम लोग, जब भी बाबा पूछा करते थे, हाँ क्या पुरुषार्थ है, क्या चल रहा है आदि आदि, बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन धीरे 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 बाबा समेटते जा रहे थे, हम जाते थे बाबा के सम्मुख, एक दो बात बताते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, अरे बाबा अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है, पूरी बात ही नहीं बताई, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा उसका एक्यूरेट समाधान दे देता था। लेकिन अंतिम दिनों में ये देखो 17 और 18 जनवरी को, हाँ, बैकग्राउंड हम बता दें इसकी, कि हम जब इंजीनियरिंग पढ़ने गए, 4 वर्ष का कोर्स था, तो बाबा ने उसके बाद हमारी जब पोस्टिंग हुई ONGC है, उसमें 3 जगह पोस्टिंग हुई थी, लेकिन बाबा ने ONGC के लिए बोला बच्चे वहां ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि आसाम में बहुत दूर पोस्टिंग हुई थी, जहां हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम्हें वहां इसलिए भेज रहा है कि वहां कोई भी 7 स्टेट में सेंटर नहीं है। ये है 67 की बात, जिस साल हमने इंजीनियरिंग पास किया, तो बाबा वहां भेज रहा है तुम्हें, जाके वहां बच्चों को पालना देनी है, वहां सेंटर खोलने। खैर भगवान तो जानी जाननहार है, बाबा ने भेजा, और बाबा ने कहा बाबा बच्चे बाबा समय पर बुला लेगा, बस इतना बोला। वहां गए और वाकई ये बाबा की ही कमाल थी कि बस थोड़े समय में ही बाबा ने वहां आने वाली आत्माओं को कैसे, हाँ, अपने वश कर लिया, बहुत आत्माओं का ध्यान का पार्ट खुल गया, साक्षात्कार का पार्ट खुल गया, बस सारे एकदम शहर में हो गया, अरे यहाँ तो भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप समझो, ये हमारे में तो शक्ति नहीं थी, ना हम जानते थे कुछ भी, बस लेकिन थोड़े समय में ही सारे मारवाड़ी माताएं, बहुत 100 से ज्यादा क्लास जम गई 2-3 महीने के अंदर ही, और उनमें बहुतों के पार्ट खुल गए। तो ये करण करावनहार बाबा है, चूंकि बाबा ने भेजा था, और बाबा जानता है, जब बाबा देखता है बच्चे में किसी में इतनी होशियारी नहीं है, ठीक से नहीं समझा सकते हैं, तो बाबा उनमें प्रवेश करके बाबा समझा देता है, जिससे दूसरे को समझ आ जाता है। तो बाबा की तरफ से, निमित्त आत्माओं की तरफ से, टीचर्स की तरफ से अगर कोई भी डायरेक्शन सेवा का होता है, तो मैंने देखा उसके अंदर डायरेक्शन ही नहीं होता सेवा का, बल्कि शक्ति समाई होती है, वो सेवा करने की का बल इतना आ जाता है कि उसमें सफलता हो जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा था, और वहां पर सेवा बहुत इस तरीके से बढ़ गई। और बाबा ने कहा था समय पर बाबा बुला लेगा, तो जनवरी 69 की बात थी, जाने की देहरादून की, वहां म्यूजियम बनने वाला था, बहन जी ने बोला कि यहाँ आ जाओ, थोड़ा समय के लिए म्यूजियम बनाना है। तो हमने बाबा को लिखा, तब तो पत्र ही होते थे, तो बाबा ने कहा बच्चे वहाँ जाना बाद में, पहले मधुबन में आओ और तुरंत आओ। तो ये जनवरी 69 की बात है, हम अपने लौकिक पिताजी को साथ लेके हम लोग मधुबन 17 जनवरी को पहुंच गए 69, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत संपूर्ण अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अवस्था देखने का मौका मिला। देखो बाबा ने भेजा था और बोला था कि बाबा समय पर बुला लेगा, तो इतना समय पर बाबा ने 2 दिन पहले ही बुला लिया। तो कर्मातीत अवस्था में हमने क्या देखा, एक रस अवस्था इसके सबके अंदर आ जाती है, जो मैं बीच में बताता हूँ। नंबर 1 कि उन दिनों, हाँ बस पहले जैसे जब भी बाबा से मिलते थे, बाबा से पूछते थे ये करना है, ये सेवा चल रही है, उस समय बस बाबा दृष्टि दी 17 और 18 जनवरी को, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने कहा बाप बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सेवा चल रही है, ये पुरुषार्थ है, ये वहां पर मतलब स्थिति है, नहीं कुछ नहीं। तो ये मुरली अंतिम कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण है, और इससे पहले की जो अवस्था है वो ही एक रस स्थिति की अवस्था है। बाबा बिल्कुल जैसे कि ना बच्चों को देखते थे, बस देख करके मन की हालत हाल जान लिया और वो परिस्थिति समझ ली। तो एक तो ये एक रस स्थिति बनानी बहुत आवश्यक है, इसलिए कि अंत में हम कर्मातीत अवस्था को जब प्राप्त करेंगे वो ये अवस्था होगी। और क्या है कर्मातीत अवस्था से जो बाबा चाहता है ना, कि कौन सी स्थिति होनी चाहिए बच्चों की, हाँ जो अंत समय में उस स्थिति पर कोई भी परिस्थिति का प्रभाव न पड़े, हाँ अचल अडोल स्थिति। और वो स्थिति का नाम क्या है जो हम सब बोलते हैं, साक्षी दृष्टा स्थिति, अंतिम समय साक्षी दृष्टा। तो वो बाबा का हमने देखा, बिल्कुल बाबा देख रहे हैं, कोई भी आके बता रहा है, बाबा को सुन रहे हैं, तो साक्षी दृष्टा ये क्या स्थिति है, इसके अंदर सुना होगा 5 बातें आती हैं। हम सबको साक्षी दृष्टा बनना है तो हमारी एक रस स्थिति रहेगी। साक्षी दृष्टा नहीं होंगे तो एक रस स्थिति नहीं होगी। तो दृष्टा क्या है? दृष्टा है आत्मा और आंखें है, यह है दृष्टि। तो दृष्टा आत्मा देखती है इन दृष्टि के द्वारा, इन खिड़कियों के द्वारा। अब खिड़की के सामने पीछे हम खड़े हो जाए, सामने दृश्य दिखाई देगा तो खिड़की तो नहीं देख रही, खिड़की से हम देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि देख रही है लेकिन दृष्टि के द्वारा दृष्टा देख रहा है। तो एक चीज है दृष्टा, दूसरी चीज है दृष्टि। और दृष्टा दृष्टि के द्वारा क्या देख रहा है? खिड़की के बाहर दृश्य देख रहा है। तो वो दृश्य जो है, गाड़ी में भी हम चलते हैं, कार में हैं, ट्रेन में हैं, बस ट्रेन दौड़ी जा रही है, बस चली जा रही है, पेड़ पौधे सारे दृश्य पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। अब दृश्य नहीं चल रहे, ये तो ट्रेन चल रही है, लेकिन हमें लग रहा है जैसे दृश्य। तो दृश्य तो बदलते जाएंगे लेकिन हमें ऐसी स्थिति बनानी है दृष्टा दृष्टि के द्वारा जो दृश्य देखे उस दृश्य में हम अटक ना जाए, रुक ना जाए। कई बार ऐसा दृश्य आ जाता है जीवन में बहुत, जो हमें हिला देता है, किसी की मृत्यु है, बहुत से बीमार है, तो उसमें हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। नहीं, वो स्थिति हमें नहीं, तो वो दृश्य। तो दृष्टा दृष्टि और दृश्य, और दृश्य में हम कब फंस जाते हैं? जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है। तो चौथी चीज है ये एटीट्यूड, दृष्टिकोण। एक ही दृश्य है, उसको एक व्यक्ति पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे नेगेटिव दृष्टिकोण से देख रहा है। तो इसीलिए दृष्टिकोण पर बहुत बहुत निर्भर करता है हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण। कहते हैं ना, एक ने कीचड़ में भी कमल देखा और दूसरे ने क्या देखा, जेल के पीछे से सलाखों से देख रहे थे, एक ने चांद में भी दाग देखा, दूसरे ने कीचड़ में भी कमल देखा। दृष्टिकोण जैसा होता है, चांद उसमें भी दाग देखा नेगेटिव दृष्टिकोण, और कीचड़ में भी कमल देखा पॉजिटिव दृष्टिकोण। और पांचवी चीज है, चार क्या क्या हुई, दृष्टा दृष्टि दृश्य दृष्टिकोण, और पांचवी चीज है दृष्टांत। हम सब जो यहां बैठे हुए हैं एक एक महान आत्मा है। हमारे दृष्टांत द्वापर युग से जो लिखे जाएंगे भक्ति मार्ग के अंदर, वो तभी लिखे जाएंगे जब हम ऐसे साक्षी दृष्टा होंगे। और इसका फायदा यही होगा कि अंत में बहुत परिस्थितियां होंगी लेकिन हम साक्षी होकर के, साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहेंगे, उनका प्रभाव हमारे पर नहीं हुआ। अरे ये क्या हुआ, इसकी कैसे मृत्यु हो गई, इसको ये कैसे, यहाँ भूचाल आ गया, यहाँ सुनामी आ गई। ये पांच तत्व केवल मन ही वशीभूत नहीं होना चाहिए हमारा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत बोलते हैं ना, तो मन ही नहीं लेकिन मन के साथ ये पांच तत्वों का भी हमें पूरा साथ होना चाहिए। इन पांच तत्वों का अगर साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मानो ये बिल्डिंग है, अर्थक्वेक बहुत तेजी से आया, गिरी, सारी दुनिया मर रही है, हम भी मर गए अगर उसमें, तो फर्क क्या हुआ हम में और दुनिया में। ये होना चाहिए कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा। मैंने देखा ब्रह्मा बाबा को, हाँ बाबा ने बस जो जो पत्र के उत्तर लिखने थे वो सब उत्तर लिखवा दिए, जो जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे वो बचे हुए काम वो सब कराए, नक्की लेक के पास की जो बिल्डिंग है जहाँ म्यूजियम है वो बाकी था वो बिल्डिंग ली। रोज रात को 9 बजे क्लास होती है, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही क्लास करी और बोला, सबको अनाउंस करवा दिया, सब 7 बजे क्लास में आ जाए क्यों, और भोजन करके आए, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि बाबा को मालूम था उसके बाद तो बाबा शरीर छोड़ देगा। तो सारी की सारी जो जो परिस्थितियां थी बाबा ने ओपनली कहा नहीं, लेकिन वैसा वैसा अपने को सेट कराया, यज्ञ को सेट करा, और उसके बाद वो परिस्थिति, और अंत में बाबा ने जब मुरली चलाई 7:30 बजे शाम को अंतिम मुरली 8 बजे चलाई, तो उस समय मुरली में बाबा ने हमेशा, बाबा को उन दिनों तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, खांसी भी थी, हार्ट की भी तकलीफ थी, लेकिन वो मुरली जो बाबा ने चलाई एक बार भी न बाबा को खांसी आई न एक बार भी कोई तकलीफ हुई। वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। हम सबको भी यही करना है, जैसा ब्रह्मा बाबा, हम सब ब्रह्मा बाबा के ही तो वत्स हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा जिन परिस्थितियों से पास हुए, हम सब भी उन परिस्थितियों से हमें भी पास होना है, और तब बस बाबा अपने कमरे में गए, बाबा ने सबको, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये शब्द कह के बाबा गए, और बाबा ने जैसे दादी के हाथ में हाथ और देह त्याग। तो ये स्थिति जो है ना कि अंत में हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, ये बात साधारण नहीं है, ये संभव है और बहुत बिल्कुल संभव है। कैसे? एक एक तत्व जो है उसके साथ हमें मित्रता कर लेनी पड़ेगी, दोस्ती, ये तत्व हमारा साथ दे अंत में, अंत में पृथ्वी है तत्व भूचाल होगा, पृथ्वी में कौन सा मुख्य गुण होता है, सहनशीलता, और पृथ्वी जो है दाता है, सब चीज पृथ्वी से मिलती है, अन्न है, जल है, पेट्रोल है, सारा भोजन है, फल है, फ्रूट, सब कुछ पृथ्वी से मिलता है, दाता है, ऐसे ही हम भी दाता बन जाए। दाता माने फिजिकल चीजें नहीं देनी, कोई कपड़ा पैसा ये तो लिमिट हो जाएगी, प्रेम शांति सहयोग स्नेह आदर सत्कार, ये ऐसी चीजें देनी है जिनमें कोई खर्च नहीं होता, हर एक को ये देते चले दाता बन जाएंगे, तो पृथ्वी भी अंत समय हमारा पूरा सहयोग देगी, अर्थक्वेक होगा इतनी दूर तक होगा लेकिन यहां पर नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है। इसके साथ साथ और जल में क्या गुण होता है, जल में एडजस्टमेंट का गुण होता है, देखो ये गिलास है ना, गिलास में एडजस्ट हो गया, कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में सेट, ऐसी हमारे अंदर एडजस्टमेंट की ताकत जितनी होगी तो क्या होगा, एडजस्टमेंट की ताकत के साथ साथ कभी भी जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, ये पहले से ही हमें जैसे इंडिकेशन देंगे, जल हो चाहे पृथ्वी हो चाहे ये 5 तत्व, कि हमारे पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा का हमने ये देखा, दादियों का बिल्कुल अंत समय तक, दादी के भी वक्त है, बाबा ने कहा हिसाब किताब सब चुकतू हो गए, सिंपली कुछ जो ये बचा हुआ है इसकी वजह से इन्हें जन्म। मुझे यहाँ मम्मा की एक बात याद आ रही है, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा 65 में, तो शरीर छोड़ा जून महीने में, तो मामा ऊपर गई, तब तो साकार बाबा यहीं थे। तो मामा ने जब शरीर ऊपर गए मामा सूक्ष्म वतन में, तो वहां पर अव्यक्त बाप दादा ने पूछा, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आए? तो मामा शांत रही, लेकिन मामा ने कहा बाद में कि नहीं बाबा मैंने तो नहीं किया। तो अरे नहीं किया, जाओ जाओ अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, सब लोग योग कर रहे हैं, और तुम वहां जाओ शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का कुछ समय के लिए अनुभव करके। तो मामा को बाबा ने नीचे भेजा, मामा नीचे आई, थोड़ा समय नीचे रही, फिर मामा ऊपर गए सूक्ष्म वतन में। तो बाबा ने कहा बच्ची अनुभव किया? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा मैंने तो अनुभव नहीं किया। क्यों बच्ची अभी भी अनुभव नहीं किया? कि बाबा मैं जब गई तो शरीर तो ठंडा हो गया था, शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, और इस रीति से मैं कर्मातीत स्थिति का कोई अनुभव नहीं कर पाई। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची अभी जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है तब तक परमधाम वापस अपने घर तो जा नहीं सकते। जिस स्थिति में आत्मा आई है पवित्र स्थिति में, उसी स्थिति में ही आत्मा जा सकती है। हर एक आत्मा का यह है, सबकी कर्मातीत अवस्था अपनी अपनी है। तो जिस स्थिति में आई है, तो जिस स्थिति में तुम आए थे वो अनुभव करके तब जाना है। तो इसीलिए अभी जाओ, अभी तो पुनर्जन्म लेना पड़े, और फिर बाद में जब बिल्कुल उस तरीके से पवित्र हो जाओगी जिस स्थिति में आई थी, तब परमधाम के गेट खुलेंगे और तब बाबा के साथ हम सब जाएंगे। तो ये मामा का अनुभव तो हम सब लोगों को भी तभी उसी स्थिति में ही जाना है। तो कभी भी हम अपने शरीर से कंटाले नहीं, तक वो न हो अरे बीमार है इससे अच्छा तो शरीर छोड़े, ये संबंधी ऐसा है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं। कोई भी हो हमें इस शरीर से अंत तक अपने को चलाना है। कभी भी इसके प्रति हमारा ये दृष्टिकोण न हो कि ये शरीर छूटे। तो इस कारण से हमें अभी अपने अंदर ये देखना है इन तत्वों को। वायु का क्या गुण है? वायु हल्की होती है, देखो। तो वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है। दोनों में विपरीत संस्कार हैं, लेकिन दोनों सदा साथ साथ रहते हैं। जहां जहां पृथ्वी वहां वहां वायु, विपरीत संस्कार। ऐसे ही हमें भी अपने संबंधियों के साथ, सबके साथ, पड़ोसियों के साथ विपरीत संस्कार भी हो, लेकिन मुझे तो रहना ही है उनके साथ। उनके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा ये नहीं करना है। ऐसे ही आकाश तत्व का क्या है इंपॉर्टेंस? आकाश विशाल होता है। कितना विशाल? सिंगल। ऐसे ही मुझे भी हृदय के अंदर विशालता धारण करनी है। यानी विशालता का मतलब किसी की अगर कोई गलत देखे, हर एक को क्षमा करते चले। जितना जिसका विशाल हृदय होता है वो क्षमा करता है, और जितना क्षमा करता जाएगा उतना वो उसको फायदा ये होगा, वो एक रस रहेगा। एक रसम तब नहीं रहते, उसने कुछ काम किया हमें पसंद नहीं आया, मुझे गुस्सा आया, एक रस कहाँ रहे। लेकिन अगर हमने उसे क्षमा कर दिया कि चलो ये उसका संस्कार है, तो हमारी एक रस अवस्था कायम रहेगी। तो इसीलिए अपनी अवस्था को हम डामाडोल न होने दें। और पांचवा तत्व है सूर्य। तो सूर्य में क्या गुण होता है? क्या होता है? देखो सूर्य बाबा कहता है ना कई बार, सूर्य सुखाता भी है और वर्षा भी करवाता है। समुद्र से पानी को लेकर के बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है, सूखते भी। ऐसे ही सूर्य की तरफ अगर हमारा मुख होगा तो क्या होगा, छाया पीछे पड़ेगी। छाया माने माया, हमारी कमजोरियां, तो कमजोरी पीछे पड़ेंगी, हमें गाइड नहीं करेंगी। लेकिन जहां सूर्य की तरफ हमारी पीठ हो गई तो हमारी छाया आगे आगे चलेगी, वो कमजोरी हमें गाइड करती रहेगी। तो ये पांच तत्वों के साथ हम वो ही ये ही एक एक गुण की कम से कम मित्रता कर ले। पृथ्वी के साथ दातापन का, सबको दाता चले, जल के साथ एडजस्टमेंट का संस्कार धारण कर ले, वायु के साथ हल्केपन का, हर परिस्थिति में हम हल्के रहें, भारी न हो, और वायु के साथ आकाश के साथ विशालता का, क्षमा करते चले। अपने अंदर हम कोई बात न रखें, और साथ में लास्ट कौन सा, सूर्य। सूर्य के साथ ये संस्कार कि ज्ञान सूर्य की तरफ हमारा सदा मुंह रहे, उसकी तरफ कभी भी हमारी पीठ ना हो, नहीं तो माया छाया आगे बढ़ाती रहे। तो एक रस स्थिति कायम करने के लिए हमें अपने शरीर के पांचों तत्वों का सहयोग लेना पड़ेगा, और इन तत्वों को सहयोग लेकर भी जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना साक्षी मूर्त भी होते जाएंगे, साक्षी दृष्टा, और जीवन में सफलता भी प्राप्त करते चले। ओम शांति, ओम शांति।
यही मन।